लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें तथा सभी बाधाओं और अड़चनों को जीवन से दूर रखें। ईश्वर उन पर जलते अंगारे बरसाएं, उन्हें आग में डाल दें, ऐसे गर्तों में जिनमें से वे नहीं निकल पाएंगे, पर निंदक देश में न रहने पाएं, हिंसक व्यक्ति पर निरंतर विपत्ति पड़े। मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, वह दरिद्रों का पक्ष लेगा। धर्मी तेरा नाम धन्य कहेंगे, निष्कपट लोग तेरे सान्निध्य में निवास करेंगे। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 140वें भजन के अंतिम चार पद। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत आज के प्रसारण में हम स्तोत्र ग्रंथ के 140वें तथा 141वें भजनों को समझने का प्रयास करेंगे। 140वें भजन में दुष्टों से रक्षा की प्रार्थना की गई है। इसमें घमंड और अहंकार के प्रति चेतावनी दी गई है तथा घमंड को प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान के विरुद्ध एवं अक्खड़पन, दुराचरण और झूठ का पर्याय निरूपित किया गया है। फिर इस भजन के अंतिम पदों में प्रभु ईश्वर से विनती की गई है कि वे इस विश्व को हिंसक और पर निंदक व्यक्तियों से मुक्त करें तथा धर्म परायण लोगों को आशीष प्रदान करें। भजनकार बदनामी अथवा अन्यों की बुराई की भर्त्सना करता है, क्योंकि अन्यों की बुराई करना भी पाप है। किसी को बदनाम करना पाप है, वह हिंसा का ही एक प्रकार है। इससे हालांकि शारीरिक रूप से हिंसा नहीं ढाई जाती, तथापि शब्दों की हिंसा से व्यक्तियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है। भजन के 13वें पद में भजनकार कहता है, मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, वह दरिद्रों का पक्ष लेगा। यहां भजनकार अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करता है। उसका पूरा पूरा भरोसा है, उसे पूर्ण ज्ञान है कि प्रभु ईश्वर दुखी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जिसने अन्याय सहा है, जिसने उत्पीड़न और अत्याचार सहन किए हैं, उसे न्याय दिलाएंगे। उसका विश्वास है कि प्रभु उसी का पक्ष लेंगे जिसे हिंसा का, अकारण निंदा का और व्यर्थी बदनामी का शिकार बनाया गया। अस्तु, प्रभु के भक्त आशा का परित्याग कदापि न करें। श्रोताओ, यह भजन आज भी समसामयिक है तथा युग युगांतर तक के मनुष्यों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वो पर निंदा के प्रलोभन में न पड़ें, अन्यों की बुराई में न लगें, अकारण किसी की बदनामी न करें। भजन का अंतिम पद प्रभु ईश्वर के नाम को धन्य कहता तथा सीधे सरल लोगों के लिए ईश्वर के सामीप्य की मंगल याचना करता है। वह कहता है, धर्मी तेरा नाम धन्य कहेंगे, निष्कपट लोग तेरे सानिध्य में निवास करेंगे। कहने का तात्पर्य यही कि सच्चे ईश्वर भक्त ईश्वर की उपस्थिति में जीवन यापन करेंगे, जो जीवन के हर चरण में उनकी रक्षा करेगा। इस संसार की कोई भी शक्ति उनसे ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर की उपस्थिति को छीन नहीं पाएगी। और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 141वें भजन पर दृष्टिपात करें। यह भजन भी दाऊद द्वारा रचा गया भजन माना जाता है, जिसमें प्रलोभन से रक्षा की आरती याचना की गई है। इस भजन के प्रथम दो पद इस प्रकार हैं, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन, मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करबद्ध प्रार्थना सांध वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे। श्रोताओ, जब हम इस तथ्य पर गौर करते हैं कि सदियों के अंतराल में व्यक्तिगत तौर पर गिरजाघरों में, मठों में और धार्मिक संस्थानों में सांध वंदना के रूप में उक्त भजन को दोहराया जाता रहा है, तो खुद हमारे अपने विश्वासी जीवन को परिप्रेक्ष्य में रखा जा सकता है। प्राचीन काल से ही जेरूसलम के मंदिर में आराधना अर्चना के लिए धूप और लोबान चढ़ाया जाता रहा है। श्रद्धालुओं के समक्ष ऊपर की ओर जाते धुएं की लपटों से बना स्तंभ एक सामान्य दृश्य हुआ करता था। इसकी मीठी सुगंध को वे मानते थे कि खुद ईश्वर अपने नथनों में इसका आनंद लेते थे। हालांकि भजनकार इस समय भजन का पाठ हाथ जोड़कर अपने घर से कर रहा था। वह निवेदन करता है कि उसकी प्रार्थना ईश्वर के पास ऊपर तक पहुंचे। वह वैसी ही प्रार्थना थी जो निर्गमन काल में भक्तों द्वारा प्रातः और संध्या समय मेमने के बलिदान पर की जाती थी। निर्गमन ग्रंथ के 29वें अध्याय के 38वें और 39वें पदों में लिखा है, तुम नियमित रूप से वेदी पर ये बलिदान चढ़ाओ, प्रतिदिन दो मेमने, एक मेमना प्रातः और एक मेमना संध्या को। आगे भजन के तीसरे और चौथे पदों में भजनकार कहता है, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे हृदय को बुराई की ओर न झुकने दे, जिससे मैं दुष्टों के साथ अधर्म न करूं और उनके भोजों में सम्मिलित न हूं। श्रोताओ, प्रार्थना के लिए हमें उचित मनोभाव की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि हम जो भी कहें वह पूरे विश्वास के साथ कहें। तभी हमारी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना हो सकती है। तभी हमारी प्रार्थना स्वच्छ हाथों और शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना हो सकती है। श्रोताओ, 141वें भजन के उक्त पदों में एक ऐसा तत्व भी है जिसे हम हे हमारे पिता प्रार्थना में पाते हैं। मेरे हृदय को बुराई की ओर न झुकने दे शब्दों का अर्थ यही है कि प्रलोभन के क्षण में मेरा परित्याग मत कर। दूसरी बात जिसे भजनकार रेखांकित करता है वह यह कि हमें सही तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। हृदय से निकली प्रार्थना ही सही प्रार्थना है। केवल शब्दों का बड़बड़ाना प्रार्थना नहीं है। हमारे आचरण एवं हमारे दैनिक कार्यों में हमारी प्रार्थना दर्शनीय होनी चाहिए। वचनकार कहता है, मेरे हृदय को बुराई की ओर न झुकने दे, जिससे मैं दुष्टों के साथ अधर्म न करूं और उनके भोजों में सम्मिलित न हूं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें बुराई लिप्त हो, व्यक्तिगत विलास और अपनी सुविधा के लिए दुष्कर्मों में लगे रहने वाले दुष्टों का हम साथ न दें, दुष्टों के संग किसी प्रकार का समझौता न करें, बस सच्चे मन से ईश्वर की दुहाई दें।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पूर्वी कलीसियाओं में 7 जनवरी को ख्रिस्त जयंती का महापर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट प्रेषित कर सभी विश्वासियों को ख्रिस्त जयंती की शुभकामनाएं अर्पित की। संत पापा ने संदेश में लिखा, मैं पूर्वी कलीसियाओं, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स के भाइयों और बहनों के प्रति अपना स्नेह प्रकट करता हूं, जो आज प्रभु के जन्म का महोत्सव मना रहे हैं। मैं उन्हें ख्रिस्त हमारी शांति और हमारी आशा के प्रकाश में पौत्र क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु प्रकाश महापर्व के अवसर पर 6 जनवरी को संत पापा फ्रांसिस ने देवदूत प्रार्थना के उपरांत मध्य अफ्रीका की याद की, जहां चुनाव के बाद नागरिकों के बीच संघर्ष हुए हैं। मध्य अफ्रीका में हाल में चुनाव हुए हैं। संत पापा ने गौर किया कि लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वे शांति की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने सभी दलों को भाईचारा एवं सम्मानपूर्ण वार्ता, हिंसा के बहिष्कार और हर प्रकार की हिंसा को रोकने का निमंत्रण दिया। हीरे और यूरेनियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों का धनी देश होते हुए भी महाद्वीप में मध्य अफ्रीका सबसे गरीब और अस्थिर देशों में से एक है। यूएन के अनुसार देश की आधी आबादी मानवीय सहायता पर निर्भर है एवं हर 5वां व्यक्ति विस्थापित है। मध्य अफ्रीका के राष्ट्रपति फाउस्टीन 27 दिसंबर को दोबारा चुने गए थे, किंतु विपक्षी उम्मीदवारों ने दावा किया है कि चुनाव में धांधली हुई है। विश्व के कई देशों में 6 जनवरी को न केवल प्रभु प्रकाश का महापर्व मनाया जाता है बल्कि विश्व मिशनरी बाल दिवस भी मनाया जाता है। संत पापा पियूस 9वें द्वारा स्थापित विश्व मिशनरी बाल दिवस का उद्देश्य है बच्चों को विश्व में अपने समकालीनों के बीच उनकी जरूरतों में ईश्वर के प्यार को बांटने के लिए प्रोत्साहित करना तथा परमधम पीठ मिशनरी बाल सोसाइटी पर ध्यान देना। इंग्लैंड एवं वेल्स में इसे मिशन एक साथ या मिस्यो की बाल शाखा कहा जाता है। मिशन एक साथ की शुरुआत 1833 में फ्रेंच धर्माध्यक्ष चार्ल्स डी फोरबिन जॉनसन ने की थी, जिन्होंने बच्चों से एक दिन की प्रार्थना एवं एक माह में 1 रुपये की मांग की थी ताकि दूसरे देशों के गरीब बच्चों की मदद की जा सके। तेरेसा मार्टिन फ्रांस में इसी की एक युवा समर्थक थी जो बाद में लिस्यू की संत तेरेसा कहलाई। वे मिशन की संरक्षिका मानी जाती हैं। परमधाम पीठ मिशनरी बाल सोसाइटी की महासचिव सिस्टर रोबेर्ता कहती हैं, सदियों से बच्चे ध्यान पाने वाले बने रहे, अब वे ही सहयोग दे रहे हैं। इस तरह पौत्र बालकपन ने मिशनरी भावना से बच्चों को शिक्षा देना और दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देना शुरू किया है। विश्व मिशनरी बाल दिवस के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने भी एक ट्वीट प्रेषित कर बच्चों को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने ट्वीट संदेश में लिखा, हम विश्व मिशनरी बाल दिवस मना रहे हैं। मैं सभी बच्चों और लड़के लड़कियों को धन्यवाद देता हूँ जो इससे जुड़े हैं कि आप यीशु के एक सहज साक्षी बने, अपने साथियों के बीच हमेशा भ्रातृत्व लाने की कोशिश करें। उधर ख्रिस्त एकता को प्रोत्साहन देने हेतु गठित परमधम पीठ समिति एवं लुथेरन विश्व संघ ने तनाव से एकता की ओर एक साथ यात्रा करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया। ख्रिस्त एकता हेतु गठित परमधम पीठ समिति एवं लुथेरन विश्व संघ ने हाल में औचित्य के सिद्धांत पर संयुक्त घोषणा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज के अद्यतन इतालवी अनुवाद के प्रकाशन की घोषणा की। समिति के वेबसाइट में प्रकाशित एक जानकारी में इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि दस्तावेज को 3 जनवरी 2021 को जारी करते हुए कैथोलिकों एवं लुथेरनों ने मार्टिन लुथर के कलीसिया से बहिष्कार की 500वीं वर्षगांठ की याद तथा दोनों कलीसियाओं ने तनाव से एकता की ओर एक साथ यात्रा में अपने समर्पण को सुदृढ़ किया। परमधम पीठ समिति के सचिव धर्माध्यक्ष ब्रेन फर्रेल ने वैटिकन न्यूज को इस पहल के महत्व के बारे बतलाया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि 20 सालों पहले ख्रिस्त एकता वर्धक वार्ता में कैथोलिक और लुथेरन औचित्य के दस्तावेज पर सहमति तक पहुंचे। कुछ लोग इसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझ सकते हैं, किंतु यह मौलिक है क्योंकि यह सुसमाचार के केंद्र एवं विवाद के केंद्र बिंदु में जाता है जिसने 16वीं शताब्दी में कैथोलिकों और लुथेरनों के बीच विभाजन लाया। कई लोग याद करेंगे कि लुथेरनों ने उसी बात पर जोर दिया जिसको लूथर ने जोर दिया था, इस तथ्य पर कि हम ईश्वर की कृपा द्वारा विश्वास में बचाए गए हैं। दूसरी ओर माना जाता है कि हमें अच्छे कर्म करना है। यही सवाल है जिस पर प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन और कैथोलिक कलीसिया के बीच हमेशा तनाव रहा है। अतः मौलिक रूप से 1999 में कैथोलिक कलीसिया एवं लुथेरन विश्व संघ के बीच सहमति की गई थी कि हमारे पास वही दस्तावेज है और मूल रूप से यही कहता है, हम लुथेरन और कैथोलिक एक साथ स्वीकार करते हैं कि ख्रिस्त के मुक्ति कार्य पर विश्वास से मिली कृपा द्वारा तथा हमारी किसी योग्यता के आधार पर नहीं, हम ईश्वर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं एवं पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं जो हमारे हृदयों को नवीकृत करते और हमें भले कार्यों को करने के योग्य बनाते हैं। इस तरह हम उस समझौता तक पहुंचते हैं जो मौलिक है, जो दरार और अलगाव एवं सदियों से चले आ रहे संघर्ष का कारण बना था। इस समझौता के 20 सालों बाद हमने निर्णय लिया है कि हमें इटालियन में इसके नए संस्करण को प्रकाशित करने की जरूरत है। अमेरिका के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हुई हिंसा की निंदा की है जहां 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष जोश गोम्स ने बुधवार को एक वक्तव्य में कहा, मैं भले लोगों के साथ अमेरिका की राजधानी में हुई आज की हिंसा की निंदा करता हूँ। हिंसा जिसने बुधवार को राजधानी को घेर लिया था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, यह अमेरिकियों के अनुरूप नहीं है। मैं कांग्रेस के सदस्यों, कैपिटल स्टाफ, पुलिस और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। महाधर्माध्यक्ष जोश गोम्स का यह बयान उस हंगामा के बाद आया है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैकड़ों समर्थकों ने उनकी चुनावी हार को पलटने के लिए बुधवार को अमेरिकी कैपिटल भवन में हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने हॉल में पुलिस से लड़ाई की और नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत का सर्टिफिकेट दिलाने में घंटों की देर की। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।